सूफी मत और जायसी का पद्मावत, डॉक्टर नीरज खरे। भक्ति काल हिंदी काव्यधारा में पहला आंदोलनात्मक पड़ाव है। सृजन की क्रांति चेतना जो काव्य में नाना रूपों में प्रस्फुटित होकर भक्ति आंदोलन में अप्लावित हुई, इसे ही पहले भारतीय नवजागरण के रूप में भी देखा गया है। अपनी समग्रता में यह कालखंड लोक जागरण का ही पर्याय है। भक्ति आंदोलन के विचार भूमि के स्पष्टतः दो आयाम निर्गुण और सगुण भक्ति काव्य के रूप में विभाजित हैं। इन्हें दो धाराओं की दो दो शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी व प्रेम मार्गी तथा राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। यहाँ हमारा उद्देश्य निर्गुण मार्गी शाखा से संबंधित है। यहाँ ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी ने भक्ति आंदोलन की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का सामान्य जनों के लिए विस्तार किया। यही समय है जब धार्मिक विश्वासों के रूढ़ टकराहट के विरुद्ध विभिन्न जातियों और विचारों के कवियों ने भक्ति के एक सामान्य मार्ग को खोजने के बहाने मनुष्य की एकता की खोज की। संभवतः यह खोज सूफी साधना के आविर्भाव के बिना अधूरी रहती। भक्ति आंदोलन का अनिवार्य प्रस्थान सूफी काव्यधारा है। सूफी संतों की साधना ने भारतीय समाज की वैचारिकता और चिंता को बड़े गहरे और व्यापक रूप में प्रभावित किया है। सूफी मत के उद्भव और विकास के संबंध में हुए अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में यह रेखांकित करना आवश्यक है कि सूफी मत इस्लाम से ही गहरे सूत्रबद्ध है। यद्यपि अनेक सूफियों ने अपने को उससे अलग रखने का भी यत्न किया है, पर इतना अवश्य है कि सूफी मत इस्लाम धर्म की कट्टरता के विरुद्ध उदार चेतना लेकर पनपा था। सूफी मत मूलतः प्रेम भावना पर स्थित है, जैसा कि चंद्रबली पांडे ने लिखा है। इसमें संदेह नहीं हो सकता है कि जिस वासना भावना या धारणा के आधार पर सूफी मत का प्रसाद खड़ा किया गया, उसके मूल में प्रेम का निवास है। प्रेम पर सूफियों का इतना व्यापक और गहरा अधिकार है कि लोग प्रेम को सूफी मत का पर्याय समझते हैं। इनोटकावत प्रेम की भावना का हृदय का क्षेत्र हृदय होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि सूफियों के मतानुसार मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की वाणियां प्राप्त हुई थी, इल्मे सकीना यानी ग्रंथ ग्रंथित ज्ञान जो कुरान शरीफ में संग्रहित है, दूसरी इल्मे सीना जो हृदय में निहित थी। इन्होंने दूसरी वाणी को अपनाया। विदेशी भूमि और इस्लाम से पनपा सूफी मत जब 12वीं शताब्दी के आरंभ में मुस्लिम सूफी संतों के जरिए भारत में आया, तब सूफी मत पर अनेक भारतीय प्रभाव पड़े। अधिकांश विद्वान भारत में सूफी मत का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती से मानते हैं। श्री परशुराम चतुर्वेदी इसका श्रेय प्रसिद्ध सूफी अलहुजवीरी को देते हैं। भारत में सूफियों के पांच मुख्य संप्रदाय चिश्ती, कादरी, सुहरवर्दी, नक्शबंदी और सत्तारे प्रचलित हुए। इन संप्रदायों का मूलतः एक ही मत है, पर आचार व्यवहार में कुछ अंतर मिलता है। प्रेम की महत्ता, सामाजिक समत्व, मानवता और पूर्ण मानव को ईश्वर से अभिन्न मानना सूफी मत की प्रधान विशेषताएं हैं। अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण में यह मत उदार और स्वच्छंद है। सूफी साधकों ने प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मुख्य साधन बताया है। सूफी मत के सिद्धांत भारतीय सर्वेश्वर के बहुत समीप है। सियाराम में सब जग जाने के समान ये भी संसार भर में उस निराकार अव्यक्त सत्ता को ही व्यक्त देखते हैं। इस अव्यक्त सत्ता के सौंदर्य पर मुग्ध होकर समस्त चराचर जगत उसे पाने के प्रयास में लगा है। वह अव्यक्त सत्ता प्रेमिका है, चराचर मात्र उसका प्रेमी है। वह उस प्रेमिका के सौंदर्य पर कभी रिझता है, कभी उसके प्रेम में विभोर हो जाता है, कभी विरह की पीड़ से पीड़ित होता है। प्रेमिका को प्राप्त करने के प्रयास में माया मोह या शैतान के विविध रूप उसके मार्ग के बाधक बन जाते हैं। वह भटकता है, मार्ग भ्रष्ट होता है, यातनाएं सहता है, परंतु प्रेम की लगन सच्ची होने पर अंततोगत्वा मिलन होता है। मिलन की वह घड़ी ही ईश्वर प्राप्ति का चरम क्षण है। इन्हीं मान्यताओं पर रचा गया हिंदी का सूफी काव्य भारतीय जनों के लिए आकर्षक बन गया। यद्यपि सूफी साधना भारत में मुसलमान साधुओं के साथ आई, इसका उद्गम स्थान ईरान और अरब का इस्लाम धर्म है, पर यहाँ आकर वह भारतीय संस्कृति के प्रभावों से कोमलतम और दार्शनिक स्वरूप धारण कर लेती है। सूफी काव्य के प्रणेता कवियों ने लौकिक प्रेम और लौकिक सौंदर्य को अलौकिक रूप में देखा है। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेमाख्यानों की सहायता से ईश्वर के प्रेम की अभिव्यंजना की है। यद्यपि उनके ऐतिहासिक लौकिक प्रेमाख्यानों में ऐतिहासिकता संदिग्ध है, क्योंकि इनका प्रयोग मात्र अलौकिक प्रेम को व्यक्त करने के लिए हुआ है। विशेषता यह है कि सूफी कवियों ने प्रेमाख्यान प्रायः हिंदू समाज के लिए हैं, जो उनका हिंदुओं से सांस्कृतिक समझौता करने का ही प्रयास है। हिंदी सूफी काव्य की प्रेमाख्यानक परंपरा मौला दाऊद से और कदाचित पहले से प्रारंभ मानी जाती है। इसके पश्चात कुतुबन का नाम आता है, फिर मलिक मोहम्मद जयसीव, जिन्होंने इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ काव्य पद्मावत लिखा। इस परंपरा में आचार्य शुक्ल ने पहले 6 कवियों को उल्लेख अपने इतिहास ग्रंथ में किया था, किंतु बाद की खोज और अध्ययन के पश्चात इस परंपरा में 50 से अधिक कवियों का उल्लेख किया जा चुका है। इसमें 36 हिंदू और शेष मुस्लिम थे। सूफी कवियों ने इस्लाम की संकीर्णता के विरुद्ध उदार प्रेम को प्रतिष्ठित किया। वे एक सरल नैतिक जीवन को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। भक्ति के लिए किसी प्रकार का आडंबर उनके मत के बीच नहीं आता था। संत कबीर जैसा युग चेता और सामाजिक सद्भाव के संवाहक कवि भी उस भक्ति आंदोलन से संबद्ध हैं जिससे जायसी जुड़े थे, किंतु दोनों की वैचारिकता में एक फर्क है। कबीर धर्मों की संकीर्णता पर चोट करने के लिए हिंदू और इस्लाम दोनों को नहीं छोड़ते। वे धार्मिक प्रतिनिधियों को फटकार लगाकर नया मार्ग चुनते हैं, जायसी सीधे चोट न कर हृदय का मार्ग चुनते हैं। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह लिखा है कि नोटेड कामा, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। एनोटेड कामत। मध्ययुगीन परिस्थितियों के बीच सूफी कवियों का संदेश महान था। उनकी प्रेम की पीर ने अलौकिक माधुर्य की सृष्टि कर भारतीय साधना को व्यापक रूप में प्रभावित किया। सूफी काव्यधारा ने हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा स्थापित करना एक प्रमुख निमित्त के रूप में स्वीकारा। संत कवियों की इनसे अन्य मान्यताओं के साथ असमानता हो सकती है, किंतु कुछ विचारों को लेकर भेद नहीं है। भक्ति साहित्य के कुछ विद्वान आलोचक तो यह भी कहते हैं कि संत काव्यधारा पर सूफी मत का गहरा प्रभाव है, किंतु कुछ इस मत के से सहमत नहीं है। यहाँ इस पर विस्तार से विचार करना हमारा ध्येय भी नहीं है। यह तथ्य विचारणीय है कि मध्यकालीन हिंदू मन सूफी साधना के प्रति अधिक सहिष्णु नहीं हो सका। मध्ययुगीन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में सूफियों के अवदान की महत्ता भी पहचानी नहीं जा सकी। इस तथ्य को अनदेखा नहीं रखा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन की साधना और विचारधारा का मूल स्रोत प्रेम है, इसे सूफियों के इश्क से भिन्न नहीं समझना चाहिए। भक्ति आंदोलन की विचार भूमि को व्याख्यायित करने में सूफी मत या साधना सहायक हो सकती है, जबकि विचारधाराओं के आधार पर विभाजित अध्ययन की परिपाटी को छोड़कर प्रायः कोई दूसरा जोखिम नहीं उठाया जाता। यह कारण नहीं कि हिंदी साहित्य के विभिन्न आंदोलनों और कालखंडों में नित्य नवीन उद्भावनाओं और विचारों के आधार पर नवोन्मेष या नवाचार की प्रवृत्ति प्रकट होती रही है। अगर इसका मूल भक्ति आंदोलन की क्रांति चेतना और सूफी काव्य में देखा जाए तो आश्चर्य नहीं है। मध्ययुग के परिवेश में सूफी कवि प्रेम के प्रचारक थे और प्रेम भावना से सर्वथा परे हैं, भेदभाव से सर्वथा परे हैं। प्रेम की भूमि पर मनुष्य मनुष्य के बीच का कोई भी आधार अमान्य है। सूफी कवियों की काव्य साधना भारतीय औपनिषदिक साधना, वेदांत, हठ योग और भक्ति आंदोलन के अनेक तत्वों का समाहार कर लेती है। साथ ही लोक संस्कृति और भाषा के लिए भी पूरी उदारता से प्रस्तुत होती है। डॉक्टर राम रतन भटनागर यह ठीक लिखते हैं कि वस्तुतः मध्ययुग के हिंदू मुसलमान साधकों ने पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा एक सामान्य साधना मार्ग विकसित कर लिया था। इस साधना मार्ग में साधक के लिए प्रेम ही एक मात्र इष्ट रह गया था, चाहे उसे भक्ति कहें या लव या इश्क। सूफी साधक इसी प्रेम के मत वाले थे। यूनाइटेड कामबल जायसी और सूफी काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली कृति पद्मावत के वैशिष्ट्य का एक प्रमुख कारण इसका सूफी मत से प्रभावित होना है। विशिष्टता के अन्य कारण भी हैं जो प्रमुख भी हैं। जायसी के लिए के व्यक्तित्व और उनकी रचना दृष्टि से भी संबंध है, पर जायसी की इस कृति को लेकर हिंदी आलोचना के भी सर्वाधिक विवाद इसकी सूफी मत पर आधारित आध्यात्मिकता यानी लौकिक कथा के साथ अलौकिक आध्यात्मिकता की प्रमुखता को लेकर है। इससे मिलता जुलता विवाद पद्मावत में अन्योक्ति या समासोक्ति को लेकर छिड़ा रहा है। ऐसी धारणाएं अप्राय रूढ़ हो चुकी हैं। प्रश्न उठता है कि क्या सूफी मत पर आश्रित होने से इसकी काव्यकृति के रूप में महत्ता स्थापित करना बाधित होती है, या सूफी मत आधारित इसकी व्याख्या करने से जायसी के कवि व्यक्तित्व की पहचान करना कठिन है, या दोनों को एक साथ मूल्यांकित करते हुए इस रचना की महत्ता को मान्य किया जा सकता है। पद्मावत के उपसंहार खंड का वह पहला अंश जिसमें तन चितवुर मन राजा की ना ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्ह वाली पंक्ति आती है, सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। इसी के आधार पर स्कृति की आध्यात्मिक सुविमत आधारित व्याख्या सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। बाद में यह अंश विद्वानों द्वारा प्रक्षिप्त घोषित हो जाने से जायसी की कृति को सुविमत से परे व्याख्यात करने के प्रयत्न हुए। इस अंश को प्रक्षिप्त मानकर क्या पद्मावत को सिर्फ लौकिक कथा के रूप में व्याख्या कर पाना संभव है, और ऐसा करने से इसकी काव्यात्मक श्रेष्ठता सिद्ध की जा सकती है? इस अंश को पृथक करके भी पद्मावत को समग्रता में देखा जाए तो अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ सूफी मत आधारित आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट है, जैसे कि सिंगल द्वीप वर्णन, मानसरोधक खंड वर्णन, पद्मावती का नक्षिक वर्णन, प्रेम खंड के वर्णन, समुद्र वर्णन आदि। ये सारे वर्णन और प्रसंग सूफी मत की प्रेम भावना और साधना पद्धति के अनुकूल हैं। ये सभी के सभी प्रक्षिप्त अंश नहीं माने गए हैं। इतना होते हुए भी यह घोषित करना जायसी के कवि व्यक्तित्व के साथ एकांग दृष्टि होगी कि उन्होंने सूफी मत या सूफी दर्शन के प्रतिपादन के लिए ही पद्मावत लिखा था। एक महाकाव्य की रचना के लिए उनके सामने कथा और काव्य के निर्वाह के लिए संयोजन के विराट प्रश्न रहे होंगे। भारतीयता के अनेक उपादानों और विविधताओं को उन्हें समोना था, कृति को भरसक लोकाभिमुख बनाना था, साथ ही भारतीय समाज, संस्कृति, भाषा, प्रकृति, परिवेश के प्रति अपनी भोग्यता का रचनात्मक इस्तेमाल भी करना था। उन्हें इन सबको महाकाव्य के व्यक्तित्व काव्यत्व में साधने की संभावना रत्नसेन नागवती पद्मावती की लौकिक कथा में नजर आई। इस संभावना के फलभूत रूप को मात्र सूफी मत की कसौटी पर ही देखने से कृति से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पीछे छूट जाते हैं। जायसी की पहले से ही सूफी मत पर आधारित काव्य रचना की परंपरा कायम थी। जायसी की मौलिकता इस अर्थ में भी है कि उन्होंने इस परंपरा को ज्यों का त्यों अपनाकर अनेक दृष्टि से उन्होंने अपने कवि हृदय की संवेदनाओं से पहचाना। अपने समय की सांप्रदायिक, जातिगत और धार्मिक असहिष्णुता से वे आक्रांत हुए होंगे। मनुष्यता के पक्ष में खड़े होने के लिए एक प्रेमी हृदय को सूफी मत से लेकर जाने वाला और हिंदू मुस्लिम हृदयों को समीप लाने की अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाला रास्ता श्रेष्ठ लगा होगा। संभवतः उन्होंने इसीलिए सूफी मत के सहारे काव्य साधना स्वीकार की, लेकिन वे इस कार्य में कोरी भावुकतावश या जाति से मुस्लिम होने के कारण सूफी संप्रदाय में दीक्षित सूफी संत, फकीर या साधु होने जैसा कि उनके बारे में प्रचारित किया गया के कारण नहीं कवि सुलभ भावना से आकर्षित हुए। पद्मावत में कथा के निर्वाह में इतिहास और कल्पना के सेतु बंध जोड़ने में खामियां रह गई होंगी, वे अपनी जगह हैं। उनके रह जाने से उसकी महत्ता अप्रभावित है। इतिहास बोध या ऐतिहासिकता जितनी है वह उप उत्पाद है। ऐतिहासिकता और लोक आख्यान कृति का आधार है। कवि कल्पना से उसका आस्वादन कृति संभव कराती है, पर आख्यान को बखानना ही उसका ध्येय नहीं रह जाता। इस प्रक्रिया में प्रेम और विरह पीड़ा में अनूठी सौंदर्य चेतना और जनभाषा के द्वारा वे दो संस्कृतियों का संगम संभव कराते हैं। जायसी ने पद्मावत किसी पूर्वग्रही दृष्टि से नहीं, मुक्त हृदय की भक्तिमय मानवीय पुकार सुनकर रचा था। अतः इसका मूल्यांकन और अध्ययन भी पूर्वग्रह से मुक्त होकर करना संगत है। जबकि सूफी मत से प्रेरित या इससे रहित होने की घोषणाएं तो यही रास्ता दिखाती हैं। इनसे होकर जाने में पद्मावत की मार्मिकता खंडित ही हाथ आएगी।